SBS हिंदी के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी रविवार को संपन्न की। इस बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार भाजपा ने राजनीतिक संकल्प लिया है कि वह जल्द ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपनी सरकार बनाएगी। भाजपा के शीर्ष नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण का सार बताते हुए मीडिया को बताया,
प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि आज जब हम तेलंगाना में हैं तो बीजेपी बहुत जगह आगे बढ़ी है। बीजेपी को उसके काम, उसके गवर्नेंस के कारण, उसकी ईमानदारी के कारण बहुत जनता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कई ऐसे प्रदेश हैं जहां अभी भी संघर्ष जारी है और कार्यकर्ता बिना सत्ता की परवाह किए हुए संघर्ष करते हैं, बलिदान करते हैं। और इस दिशा में उन्होंने तेलंगाना की बात की, केरला की बात की, बंगाल की बात की। और इसी में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही प्रधानमंत्री जी ने कि जबकि कोरोना काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है, महंगाई बढ़ी है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसलोकेटेड है, तब भी भारत की विकास दर 8.2% प्लस है। भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई हुआ है। भारत में FDI रिकॉर्ड आया है। भारत में गरीबों की संख्या में भी कमी आई है।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हुई एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और तेलंगाना के लोगों से भाजपा को जिताने के लिए कहा, जिससे वे डबल इंजन सरकार का लाभ उठा सकें।
कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमारी सरकार ने तेलंगाना के भी करोड़ों साथियों को तेजी से मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को भेदभाव मिल रहा है। यही तो सबका साथ सबका विकास है। इसी वजह से आज देश के सामान्य नागरिक का भाजप पर इतना विश्वास है। मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है।
इसी दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में ही विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल पर हमला बोला और उनकी खामियां गिनवाई।
पवित्र गंगा में इन्होंने अस्थि नहीं बल्कि मानव शरीर को ही बहा दिया। शव बहे, हजारों के तादाद में शव बहे। कोरोना कंट्रोल में पूरी तरह से आप फेल्यूर हो गए। लाखों लोगों का मृत्यु का आप कारण बने। सडनली जो ओवरनाइट आपने लॉकडाउन अनाउंस किया, आजादी के बाद द लार्जेस्ट ट्रॉमा फेस्ड बाय द इंडियन पॉलिटी। यू मेड द पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, क्रोर्स ऑफ पीपल टू वॉक ऑन द रोड्स। दुख होता है। शर्म की बात तो यह है, फ्री में ट्रेन भी अरेंज नहीं करते जब जनता दुखी है, करोड़ों जनता। हर चीज, हर पॉलिसी देश को नष्ट कर रहा है। इंटरनेशनल इंडेक्सेस है, हर इंडेक्स में गिरावट। पहले से बुरा हाल, बद से बदहाल। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में हमारे स्थान 80 पर था, माननीय मोदी जी के कालखंड में 131 पे पहुंच गए। हंगर इंडेक्स में हमारे भारत का स्थान 63 था, आज मोदी जी के बदौलत, मोदी जी के महान कार्यकर्ता का निशाना है, हम 101 पे पहुंच गए। इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का जगह 85 था, 85, आज हम पहुंच गए 119। यहां पे भी गिरावट। बेरोजगारी एवर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। मोदी जी आने से पहले इसका दर, इसका परसेंटेज, इट वॉज एट 5.6%। महान मोदी जी के महान एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा यह है एवर हाई इन द कंट्री 8.1% पे पहुंच गया।
राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी रियाज अटारी की सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कई तस्वीरें आने से मामले में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान रियाज अटारी को भाजपा का कार्यकर्ता बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और भाजपा से जवाब मांगा।
ये क्या हो रहा है इस देश में, कौन करवा रहा है ये सब? एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक हमले होते हैं और सवाल ज्यों के त्यों, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप। लेकिन ये फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है कि रियाज अटारी, कन्हैया लाल का हत्यारा, आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। आज सूर्यास्त तक हम उम्मीद करते हैं कि तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी इस बात का जवाब देगी, इस देश को जवाब की इंतजार है।
भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के प्रवक्ता सादिक खान ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे गहलोत सरकार की विफलता बताया। मगर इससे पहले कि उदयपुर का विवाद थम पाए, जम्मू के रियासी शहर में पकड़े गए लश्कर आतंकी तालिब हुसैन शाह के भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्तों ने एक और नए विवाद को जन्म दे दिया है। शाह को कुछ महीने पहले ही जम्मू के अल्पसंख्यक मोर्चे के आईटी और सोशल मीडिया सेल का प्रमुख बनाया गया था। पुलिस को शाह के पास से 2 AK-47 राइफल, 7 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल बरामद हुई है। भाजपा प्रवक्ता आरएस पठानिया ने इसका ठीकरा ऑनलाइन मेंबरशिप पर फोड़ा, लेकिन एक आतंकी को सोशल मीडिया सेल के प्रमुख के पद पर क्यों और कैसे बिठाया गया, इसका खुलासा करना बाकी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने भी भारत में बढ़ते धार्मिक उन्माद और विभाजनकारी राजनीति पर चिंता जाहिर की है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में भारतीय दूतावास की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने सत्ताधारी और विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया।
The party in power believes that every government election is entitled to judicial endorsement. The parties in opposition expect the judiciary to advance their political positions and causes. This flawed thinking of all hues flourishes in the absence of proper understanding among people about the constitution and the functioning of the democratic institutions. It is the vigorously promoted ignorance among general public which is coming to the aid of such forces whose only aim is to run down the only independent organ that is the judiciary.
महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में पहली बड़ी बाजी शिवसेना बागी गुट और भाजपा के हाथ लगी है। रविवार को भारी हंगामे के बीच हुए स्पीकर के चुनाव में शिंदे गुट के भाजपा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर चुने गए। श्री नार्वेकर को 164 वोट मिले, जबकि उद्धव गुट के उम्मीदवार राजन सालवी के समर्थन में 107 वोट पड़े। सोमवार यानी आज नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फ्लोर टेस्ट में अपनी ताकत साबित करनी है। हालांकि विधानसभा स्पीकर के चुनाव के बाद शिंदे के लिए फ्लोर टेस्ट की राह आसान लग रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।